ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे प्रदूषित स्थानों को चिन्हित करने के लिए वजीरपुर में पायलट परियोजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण कराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने द्वारका सेक्टर 19 में स्कूल के निर्माण का शिलान्यास किया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया सोनिया विहार, भागीरथी और वजीराबाद स्थित जल संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की और दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे कल से 7 नवंबर तक 195 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे प्रदूषित स्थानों को चिन्हित करने के लिए आज वजीरपुर क्षेत्र में पायलट परियोजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण कराया। सरकार ने कहा है कि सर्वेक्षण के आंकड़ों से शहर के प्रदूषण की रोकथाम के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में 13 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक होता है। इन स्थानों पर प्रदूषण के कारणों का पता लगाने और उसे कम करने के लिए आज दिल्ली सरकार ने वजीरपुर क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण करवाया था। 120 मीटर की ऊंचाई और 200 मीटर की परिधि में हुए इस सर्वेक्षण के आंकड़ों को पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजा जाएगा। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद दोनों विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शहर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो शहर के अन्य स्थानों पर भी इसे लागू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए रही सुदिन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज द्वारका सेक्टर 19 में स्कूल के निर्माण का शिलान्यास किया, जिसमें 100 से अधिक कमरे, 6 अत्याधुनिक लैब, लाइब्रेरी और खेल से संबंधित परिसरों का निर्माण शामिल है। स्कूल की इमारत का निर्माण एक वर्ष की समय अवधि के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्कूल के बनने से द्वारका क्षेत्र के कुतुब विहार, सरिता विहार, पोचमपुर, भगत सिंह एनक्लेव सहित आसपास के हजारों बच्चों को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस स्कूल में विश्व स्तरीय सभी सुविधाएं होंगी, जो निजी स्कूलों की तुलना में काफी बेहतर होंगी।
इस बिल्डिंग में 104 कमरे होंगे, 3 लैब्स होंगी, 1 लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा और आप मॉडल में देखिएगा, इस स्कूल बिल्डिंग में एक बहुत यूनिक चीज है, एक एम्फी थिएटर होगा। एम्फी थिएटर एक ऐसी चीज है जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एक 750 सीटर एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है।
इस मौके पर स्थानीय विधायक गुलाब सिंह मटियाला और शिक्षा विभाग के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित समागम समारोह आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। करीब एक महीने तक चले इस समारोह की शुरुआत 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने इस अवसर पर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर, पेंशन योजनाओं और बुजुर्ग श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम जैसी सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 के दौरान आयोजित महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के सोनिया विहार, भागीरथी और वजीराबाद स्थित जल संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। यहां से जल शोधन के बाद कुछ इलाकों को छोड़कर शहर भर में पानी की आपूर्ति भी पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। यमुना नदी में पिछले दिनों अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से शहर में पेयजल की जलापूर्ति प्रभावित हुई थी। एक रिपोर्ट।
जल बोर्ड ने बताया है कि सभी संयंत्रों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है और शहर में पेयजल जलापूर्ति जारी है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले यमुना के जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से जल संयंत्रों में जल शोधन प्रभावित हुआ था। जल बोर्ड ने यह भी बताया है कि बीते कई दिनों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों की मरम्मत के कारण शहर के कई इलाकों में पानी की कमी भी देखी जा रही है। नारायणा इलाके में राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास पानी की नई पाइपलाइन को जोड़ने के चलते आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित है। जिन इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित है उनमें इंद्रपुरी, मायापुरी, नारायणा गांव, नारायणा विहार, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, HMP कॉलोनी और कीर्ति नगर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली की महापौर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने बताया है कि राजधानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगम द्वारा 370 से अधिक सर्विलेंस टीम बनाई गई हैं, जो दिन रात शहर के प्रदूषण पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिन और रात की पालियों में लगभग 1300 से अधिकारी काम कर रहे हैं। डॉक्टर ओब्रॉय ने बताया कि निगम के अधिकार क्षेत्र में कुल 15,500 किलोमीटर सड़कें आती हैं, जिनकी स्वचालित मशीनों और मैनुअली तरीके से सफाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त 195 वाटर स्प्रिंकलर और जेटिंग मशीनों को भी तैनात किया गया है। वहीं प्रदूषण के चिन्हित स्थलों पर 30 एंटी स्मॉग गन तैनात की गई हैं। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर आज महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार 2030 तक देश से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
$25 मिलियन का पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक देश को रोग मुक्त पशुधन का बनाए।
उन्होंने कहा कि पशुधन जनगणना पशुधन के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाएगी। श्री सिंह ने कहा कि G20 महामारी कोष परियोजना से प्राप्त धनराशि पशु चिकित्सालयों के विकास और सुधार में सहायता करेगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने उत्पादकता बढ़ाने और शासन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह 2024 के पुरस्कार वितरण, कर्मयोगी सप्ताह के समापन और शिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही। एक रिपोर्ट।
श्री मुरुगन ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा की मदद से निर्णय लेकर अपने विभागों में बेहतर काम और नवाचार सुनिश्चित कर सकते हैं। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि ChatGPT और जमीनी जैसे AI टूल्स उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और बार बार किए जाने वाले काम के बोझ को कम कर सकते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने IGOT कर्मयोगी पोर्टल का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, फिल्म देखने और फोटोग्राफी कौशल वृद्धि पर 3 वेबिनार आयोजित किए हैं। उन्होंने IGOT प्रयोगशाला रिपीट, उन्होंने IGOT प्रयोगशाला की स्थापना सहित मंत्रालय के नए दृष्टिकोण की भी सराहना की। और
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल की हैं। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और अब ये देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वे नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के 53वें स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नड्डा ने बताया कि पहले देश में केवल 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान थे और वर्तमान में ये संख्या 22 हो गई है। उन्होंने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स की स्थापना करके सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया है और 3 स्तर की उन्नत देखभाल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में MBBS और स्नातकोत्तर सीटों में भारी वृद्धि देखी गई है। श्री नड्डा ने आगे बताया कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में और 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे कल से 7 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियों के 195 अतिरिक्त फेरे लगाएगा। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से उपलब्ध होंगी। इन रेलगाड़ियों में विशेष तौर पर पटना, कटिहार और दरभंगा सहित पूर्व की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया है कि यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। उन्होंने आगे बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों में अनारक्षित श्रेणी के लगभग 54,000 यात्रियों के लिए भी सीटें बढ़ाई गई हैं। श्री वर्मा ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहां यात्री टिकट खरीदने के साथ ही आराम कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर जाने वाली सभी विशेष रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 16 से परिचालित की जाएंगी।
हमारे जो दो सबसे बड़े स्टेशन है नई दिल्ली और आनंद विहार, यहाँ हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करे हैं। इस बार हम लोगों ने 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी हुई हैं, जिनकी बुकिंग हो रही है और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने 18 रेक्स और रेडी करके रखे हुए हैं। आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक्स्ट्रा ट्रेन चला सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे भीड़ न हो, भगदड़ की समस्या नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने पहली बार बहुत बड़े होल्डिंग एरिया पैसेंजर को प्लेटफॉर्म के बाहर क्रिएट करे हैं और हम लोगों ने रिजर्व पैसेंजर के लिए अलग और अनरिजर्व पैसेंजर के लिए अलग एरिया क्रिएट किया है और उनका अलग अलग एक कलर स्कीम बनाई गई जिससे लोगों को उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 200 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में कल देर शाम गुरुग्राम, दिल्ली, मानेसर और रोहतक सहित 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी की टीम ने 46 लाख रुपए नकद, बैंक लॉकर की चाबियां और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने बताया कि एक कंपनी ने फर्जी बिल और प्रोजेक्ट दिखाकर 200 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए न्यायालयों को सुलभ बनाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने और सुनने में अक्षम वकीलों को सांकेतिक भाषा जानने वाले दुभाषी उपलब्ध कराने की शुरुआत की है।
We've been conducting training programs across India as part of our annual calendar to first and foremost equip our staff and to ensure that they do not remain in the back offices, but they are dignified members of the workforce. Our websites had visual captures, so we have changed that by providing for audio captures. We had in my court a young woman lawyer who has both hearing and speech impairment. She is qualified in the law and she would like to have an access to the opportunity to present her cases before the court. So for the first time, we introduced sign language interpreters for people like her.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ये साक्षात्कार आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा वेबसाइट newsonair.gov.in और newsonair ऐप पर भी उपलब्ध होगा। राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा और कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे प्रदूषित स्थानों को चिन्हित करने के लिए वजीरपुर में पायलट परियोजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण कराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने द्वारका सेक्टर 19 में स्कूल के निर्माण का शिलान्यास किया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया सोनिया विहार, भागीरथी और वजीराबाद स्थित जल संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। और दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे कल से 7 नवंबर तक 195 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।